नंबर थ्री, इटली में पुनर्जागरण, सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति 13वीं-14वीं सदी और पुनर्जागरण संस्कृति का अंकुरण। यद्यपि हमें पुनर्जागरण को हमेशा अधिक से अधिक व्यापक रूप में और एक ऐसे आंदोलन के रूप में देखना चाहिए जिसमें मूलभूत एकता थी, फिर भी उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं का उल्लेख करना जरूरी होगा। क्लासिकवाद का पुनरुद्धार तथा कला एवं साहित्य के प्रति व्यावहारिक और मानवीय दृष्टिकोण, जहां आमतौर पर प्रायः सारे यूरोप के पुनर्जागरण आंदोलनों की सामान्य विशेषता थी, वहां इस विकास का आंतरिक स्वरूप सभी जगह एक जैसा नहीं था और न ये सब एक ही समय घटित हुए। जैसा कि हम देखेंगे, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में जो विविधता थी उसने उनके गुणात्मक पक्ष को ही निर्धारित नहीं किया, वरन यह भी निश्चित किया कि किसी विशेष समाज में पुनर्जागरण संबंधी मूल्यों या विचारों को कितनी जल्दी सफलतापूर्वक स्वीकार किया जा सकता है। पुनर्जागरण की सर्वप्रथम अभिव्यक्ति इटली में हुई, जो कट्टरपंथी कैथोलिक संप्रदाय का गढ़ था। इसका स्पष्टीकरण इसी रूप में दिया जा सकता है कि वहाँ का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचा अपने आप में औरों से भिन्न या विशिष्ट था। पहली बात तो यह है कि यूरोप के अन्य स्थानों की तुलना में वहाँ सामाजिक वर्गों का विकास कुछ भिन्न रूप में था। मध्यकाल के प्रारंभ में प्रायद्वीप के एक बहुत बड़े भाग में नागरिकों तथा योद्धा वर्ग, जिसने राजनीतिक, सैनिक और सांस्कृतिक नेतृत्व पर एकाधिकार कर रखा था, के बीच सामंती विभाजन देखने में नहीं आया था। फलतः प्रभावशाली भूस्वामियों को अपदस्थ करके समीप के नगरों में जाने के लिए विवश किया गया। इन नगरों का साहसिक व्यापारियों के संरक्षण में विस्तार हो रहा था। इतालवी अमीर वर्ग के महत्वपूर्ण वर्गों, पुराने पतनशील परिवारों, वर्दी, अलवर्ती, पेरुजी आदि और विशेष रूप से नवोदित व्यापारिक और औद्योगिक वर्ग के एक ही नगर की सीमा में एकत्र हो जाने से यहाँ यूरोप के किसी अन्य देश से पहले एक समन्वित नागरिक समाज की स्थापना हुई। इसका एक महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि लोगों का गणतंत्रवाद की ओर झुका हुआ, गणतंत्रवादी प्रवृत्तियों और साम्राज्यवादी नियंत्रण में संघर्ष को हम 11वीं शताब्दी में भी देखते हैं, जब लोम्बार्ड ने स्वायत्ती शासी सरकार की स्थापना के उद्देश्य से शक्तिशाली फ्रेडरिक बारबोसा के खिलाफ अभियान छेड़ दिया था। उत्तरी और मध्य इटली में जहां पोप और सम्राट सत्ताधारी थे परंतु कमजोर थे, अधिकतर नगर ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी पहले स्वतंत्र नगर राज्य के रूप में विकसित हो गए थे। इसके दो ज्वलंत उदाहरण इन दोनों ने ही पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वेनिस और फ्लोरेंस हैं जिन्होंने मिलान की साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों का घोर विरोध किया। जैसा कि सर्वविदित है कि इटली में साहित्यिक मानववाद फ्लोरेंस से आरंभ हुआ, जो कि दांते, पेट्रा तथा बोकाचियो की भूमि है। बहरहाल यूनानी दर्शन की भांति लैटिन व्याकरण का अध्ययन अध्यापन भी पुनर्जागरणकालीन विद्वानों की ही विशेषता नहीं थी। यह व्याकरण दीर्घकाल से मध्यकालीन पाठ्यक्रम का अविभाज्य अंग था और यह अकेला ऐसा व्याकरण था जो यूरोप के विद्वत मंडल में लोकप्रिय था। तथापि इस काल में जो विशेष बात सामने आई वह यह थी कि व्याकरण में अधिक बारीकी आ गई और प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन में अधिक विविधता आ गई। इसके साथ ही पुनर्जागरण की विद्वत मंडली में एक नया आयाम प्रकट हुआ। यद्यपि इनके प्रिय विषय पुरातत्व और धर्म संबंधी पक्ष थे, फिर भी जिस बात को वे प्रचार करते थे उसको उन्होंने एक बौद्धिकता का रूप देने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए प्लेटोनिक अकादमी के विख्यात सदस्य किसेनस ने अपने तत्व मीमांसीय सिद्धांतों को गणित और ज्यामिति के प्रतीकों से स्पष्ट किया। एक अन्य प्रतिभाशाली मानवतावादी विद्वान मिरांडोला न केवल लैटिन अपितु हिब्रू, अरबी, ग्रीक और कुछ पूर्वी भाषाओं के भी ज्ञाता थे। सार्वभौमिकता और तर्क बुद्धिवाद का यह संगम पुनर्जागरण संस्कृति का अस्थायी लक्षण बनने जा रहा था। दूसरी ओर मध्यकालीन साहित्य में अंतर्मुखी शैली तथा अपेक्षाकृत अधिक लौकिक या मानववादी शैली में अंतर की रेखाएँ कुछ कुछ स्पष्ट होने लगी थी। दांते तथा पेट्रा की तुलना करने पर यह अंतर स्पष्ट हो जाता है। अतिशय धर्मपरायण स्वभाव का दांते जहाँ पाप और प्रायश्चित के मसीही धारणाओं के भार से दबा रहा, वही पेट्रार्क 1340-74 ने ऐसे चीज़ों के बारे में लिखा जिन्हें सुनने में लोगों की अधिक रुचि थी। उसने प्रेम के बारे में तथा प्रकृति के बारे में लिखा और उन निराशाजनक चीज़ों का उल्लेख भर करके छोड़ दिया जो कदाचित पिछली शताब्दी में लोकप्रिय रही थी। दांते तथा पेट्रार्क दोनों ने प्रेम गीत लिखे हैं, किंतु जहां दांते का बीट्रिस के प्रति प्रेम आध्यात्मिकता लिए हुए है, वहां पेट्रार्क का लौरा के प्रति प्रेम अधिक आवेगपूर्ण और मानवीय है। दांते सामाजिक एवं परंपरा से संबंध अपनी धारणाओं में या कहें कि अपनी पूरी की पूरी विश्व दृष्टि में रूढ़िवादी हैं, वहाँ पेट्रार्क में हम उस अतिशय आत्मचेतन व्यक्तिवादिता के दर्शन करते हैं जो यूरोपीय पुनर्जागरण का बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग है। आधुनिक इतालवी गद्य के जनक तथा पेट्रार्क के समसामयिक जियोवान्नी बुकाचियो 1313 से 75 के साहित्यिक मानववादियों की पहली सीढ़ी के अंतर्गत रखे जा सकते हैं। उनकी मुख्य रचनाएं हैं डेकामेरॉन, 100 से ऊपर कहानियों का संग्रह है, तथा जीनियोलॉजी ऑफ द गॉड्स, देवताओं की वंशावली है, जिसमें बुकाचियो ने प्रोमेथियस के मिथक की पुनर्व्याख्या की है। इसमें उन्होंने आग चुराने वाले को पढ़े लिखे व्यक्ति के समान बताया है, क्योंकि स्पष्टतः विद्या ही मनुष्य को नैतिक ज्ञानवान तथा गुणी बनाती है। इटली में पेट्रार्क का व्यक्तिवाद जैसे जैसे परिपक्व होता गया, वह अधिकाधिक व्यावहारिक और धर्मनिरपेक्ष होता गया। इसका श्रेय इस तथ्य को है कि इटली के प्रतिभाशाली व्यक्तियों ने सदा ही धर्मदर्शन या तत्व मीमांसा की अमूर्त समस्याओं की बजाय कानून या प्रशासन की ठोस समस्याओं पर अधिक ध्यान दिया। इटली के विश्वविद्यालयों में धर्म संकायों का विकास भी अपेक्षाकृत काफ़ी मंद गति से हुआ। यह महज संयोग नहीं था कि इटली के महानतम मसीही विद्वानों जैसे अंसालेम, पीटर लोम्बार्ड, एक्विनास सभी ने फ्रांस में प्रशिक्षण प्राप्त किया था। यहाँ विद्वत्ता के साथ साथ अन्य व्यवसायों का सहज संगम देखा जा सकता था। उदाहरण के लिए फ्लोरेंस में हम विद्वान व्यापारी, विद्वान प्रशासक जैसे दिलचस्प सामाजिक वर्गों के संपर्क में अक्सर आते हैं। इनमें विद्वान प्रशासक के अंतर्गत गणराज्य के अंतिम 3 प्रशासक शामिल हैं, सेलोलाती, ब्रूनी और पोदजो ब्राचोलिनी। सेलोलाती 1331 से 1406, ब्रूनी 1369 से 1444 और ब्राचोलिनी 1380 से 1459। बहरहाल इतालवी पुनर्जागरण की सबसे प्रमुख विशेषता है सौंदर्य की, पूर्णतः सहज सौंदर्य की उपासना, जो किसी तरह के भौतिक या मानसिक दबाव से मुक्त थी। कला पर मानवतावादी प्रभाव को सटीकता या यथार्थता पर बल के रूप में देखा जा सकता है। इटली के कुछ कलाकारों जैसे लियोनार्दो दविंसी, अल्बर्टी और सैनिनी कला में वैज्ञानिक मानदंडों को लागू करने की संभावनाओं के प्रति इतने मुग्ध थे कि उन्होंने इस विषय पर विपुल साहित्य का निर्माण किया। लियोनार्दो लिखता है कि अच्छे चित्रकार को 2 प्रमुख चीज़ों का चित्रण करना होता है, मनुष्य और उनके मन की भावनाएं। सौंदर्य और प्रतिनिध्यात्मक औचित्य का वह दोहरा बोध इटली में और इटली के बाहर भी संपूर्ण पुनर्जागरण आंदोलन पर छाया रहा। फिर भी यह स्वीकार करना होगा कि काफ़ी समय तक जो तत्व पुनर्जागरण के कलाकारों की अपने से पूर्ववर्ती कलाकारों से भिन्न पहचान निर्धारित करता है, वह तकनीक है, विषय वस्तु नहीं। साहित्यिक मानवतावाद का विकास, जैसा कि सब जानते हैं, फ्लोरेंस में हुआ। दांते पेट्रार्क और बुकाचियो की धरती पर पुनर्जागरण काल के आरंभ से ही साहित्य में 2 शैलियों के बीच अंतर तेज होने लगा, एक तो मध्यकालीन अंतर्मुखी शैली और दूसरी ज़्यादा वास्तविक मानवतावादी शैली। चित्रकला में प्रकृतवाद के प्रथम आविष्कर्ता फ्लोरेंसवादी जोत्तो थे 1266 से 1336। उन्हें वार्दिस तथा पेरुजिस सांता क्रास चैपल फ्लोरेंस तथा पेंदुआ में ब्रौना चैपल की सज्जा का काम सौंपा गया था। जोत्तो के मैदोन्ना बहुत से संतों और शहीदों से घिरे हुए, जो कि सामान्यतः दिव्यता को बढ़ाते हैं, नहीं है, वरन पार्थिव गुणों या भावनाओं को व्यक्त करते हुए प्रतीत होते हैं। स्पष्टतः उनमें भावनाओं और मुख मुद्राओं की अभिव्यक्ति को बड़ी बारीकी से प्रदर्शित किया गया है। इनसे भावनात्मक संबंधों को स्पष्ट करने में अधिक सहायता मिलती है। मशासियों 1401 से 28 ने इस प्रकृतवाद को अपने भित्त चित्रों में कुछ चमत्कारी की नवीन उद्भावनाओं द्वारा और आगे बढ़ाया। यहाँ उनका प्रभाव काफ़ी हद तक छाया एवं प्रकाश की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर रहा है। बहरहाल 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक जबकि संरचना और प्राकृतिक रूपों के रंग रूप की जानकारी में काफ़ी परिष्कार आ चुका था, मसासियों के अनुयायियों ने छाया एवं प्रकाश के ऐसे उग्र वैषम्य का परित्याग करने का प्रयास किया जो रंगीन क्षेत्रों की स्पष्टता को धूमिल कर देता है। अभिव्यक्ति के प्रभावी माध्यम के रूप में रेखांकन कला पर अधिक बल दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि यह परिवर्तन उसी समय हुआ जब पुनर्जागरण काल के श्रेष्ठ कलाकार मानव शरीर का विस्तार से अध्ययन कर रहे थे। चूंकि वे अब अपनी रेखाओं की सूक्ष्मता और अंगों के पारस्परिक अनुपात के चित्रण पर अधिक निर्भर कर रहे थे, अतः विरोचियों और दविंसी जैसे कलाकारों ने मानव शरीर की शारीरिकीय संरचना एवं उसकी सामान्य कार्यविधि का ही अध्ययन नहीं किया, अपितु यह भी बताया कि किसी अंग को गहराई, सातत्य और गति के संदर्भ में किस प्रकार अभिव्यक्त किया जाए। फलतः प्रकाश विज्ञान की कुछ खोजों से यह घनिष्ठ संबंध और चित्रीय रूपों में नवीन उद्भावनाओं को पश्चिमी कला में प्रमुखता मिली। जैसा कि ऊपर संकेत किया जा चुका है कि पुनर्जागरण काल की कला मुख्य रूप से धार्मिक है, यह अत्यंत व्यापक और विविधतापूर्ण है। इसमें एक ओर जहां वैयक्तिक भक्ति की खातिर लघु फलक चित्र हैं, तो दूसरी ओर विशाल के वर्जिन ऑफ द रॉक्स, वर्जिन एंड सेंट आने दोनों के रचनाकार लियोनार्डो माइकल एंजेलो द्वारा चित्रित सिस्टाइन गिरजाघर की छत की चित्रावलियाँ, जिन्हें 1508-12 के दौरान चित्रित किया गया था, ये सभी पुनर्जागरण काल के धार्मिक कला के उदाहरण हैं। तथा इन्हीं के साथ राफेल द्वारा चित्रित कुमारी मेरी के अनेक चित्र हैं। यह धार्मिक तत्व हालांकि संपूर्ण पुनर्जागरण आंदोलन पर छाया हुआ है, लेकिन फिर भी पुनर्जागरण कला अपने सूक्ष्म अर्थ संकेतों से रहित नहीं है। अतः पुनर्जागरण कला की समूची भंगिमा को ठीक ढंग से पहचानने के लिए कभी भी आंतरिक संगठनाओं को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, जो प्रायः परिवर्तनशील सामाजिक यथार्थ को प्रतिबिंबित करती है और जिनमें निसंदेह एक प्रकार का सूक्ष्म पैटर्न दिखाई देता है। पुनर्जागरण कालीन कला एवं कलाकारों की चर्चा करते समय लियो बेतिस्ता अल्बर्ती 1404 से 72 की ओर हमारा ध्यान सहज ही आकर्षित होता है। लियोनार्डो दविंसी के पहले के कलाकारों की तुलना में उनका व्यक्तित्व सबसे ज़्यादा सार्वभौम है। अल्बर्ती ने कला की प्रशंसा एक सामाजिक उद्यम के रूप में की है, क्योंकि उनकी दृष्टि में इनका संबंध जनता के स्वास्थ्य और कल्याण से है। अल्बर्ती का यह विचार बोकाचियो के साहित्य संबंधी विचारों से काफ़ी मिलता जुलता था। उसका विविधतापूर्ण प्रतिभा संपन्न जीवन वस्तुतः कभी विश्राम न लेने वाली शक्तियों और भारी उद्यम का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने अपने कला जीवन की शुरुआत नाट्य लेखन से की। उन्होंने रोम के डूबे हुए जहाज़ों को निकालने का उपाय बताया। चित्रकला 1435 और भवन निर्माण 1452 पर उनकी कृतियां अपने क्षेत्र की श्रेष्ठ रचनाएं मानी जाती हैं। हालांकि अल्बर्ती जीवन भर अविवाहित रहे, किंतु उन्होंने परिवार 1443 विषय पर एक स्वतंत्र ग्रंथ की रचना की। फ्लोरेंस वासी लियोनार्डो द विंसी 1452 से 1519 के नाम से लोग इतने ज़्यादा परिचित हैं कि उसके बारे में कुछ भी कहना निरर्थक होगा। द विंसी केवल कलाकार ही नहीं थे, वे एक पूर्ण मानव थे और उनमें अद्भुत वैज्ञानिक जिज्ञासा, भाव समृद्धि और कल्पनाशीलता थी। वर्जिन ऑफ द रॉक्स, ला जोकोंडा, मोनालिसा या दी लास्ट सपर जैसे विख्यात चित्रों के रचयिता ने रक्त संचार और प्रकाश तरंगों के संचरण के बारे में बड़े दिलचस्प सिद्धांत प्रतिपादित किए। बहुनालेव बंदूक तथा उड़ने की मशीन के डिजाइनर तैयार किए और स्थानीय नगरों एवं जल प्रदाय प्रणाली के सुधार के बारे में पर्याप्त सहायता प्रदान की। द विंसी की कला की विशेषता यह है कि इसमें मानव शरीर एवं प्रकृति का बड़ी ही गहराई एवं बारीकी के साथ चित्रण किया गया है। दी लास्ट सपर तीन तीन शिष्यों के चार समूह में प्रपेच के महत्व और ज्यामितिक विन्यास का चित्रण है, जबकि ला जोकोंडा या मोनालिसा जो 1503 से 1506 के बीच में पूरा हुआ, दर्शकों पर रहस्यपूर्ण मुस्कराहट बिखेरते रहेंगे। पर त्रिपण रेखा का मूर्ति निर्माण सफल प्रयोग फ्लोरेंस के एक अन्य कलाकार दोनातेलो ने किया। प्लास्टिक कलारूपों में दोना तेलों की श्रेष्ठता 15वीं शताब्दी के अंत तक निर्विवाद रूप से कायम रही। 15वीं शताब्दी की समाप्ति से पहले ही उसकी गणना इटली के अग्रणी कलाकारों में की जाती थी। उन्होंने दबिंसी से पहले ही मानवीय शरीर रचना का वैज्ञानिक अध्ययन किया था, जिसकी वजह से उन्हें मानव शरीर को विभिन्न मुद्राओं में चित्रित करने में कोई विशेष कठिनाई नहीं हुई। उनके द्वारा निर्मित डेक्टी की मूर्ति 1430 में स्थापित पुनर्जागरण कला की प्रथम नग्न मूर्ति है। फ्लेमिश तैल चित्रों का सफल अनुकरण पहले पहल वेनिस में किया गया था। टिटियान जैसे वेनिसवासी कलाकारों ने तैल का उपयोग टेम्परा से अलगाव के कारण ही नहीं किया था, बल्कि रंगों के प्रति एक निश्चित भावना के कारण किया था। वेनिस की चित्रकला अपने रंगों में सर्वाधिक भड़कीली और सबसे ज़्यादा लौकिक कला है, जैसा कि चित्रकार जोर्जोने को की दो सर्वोत्तम कलाकृतियों टेम्पेस्ट और फेटे सापेत्रे से भी उजागर होता है। इसके अलावा वेनिस में कला वैसे भी उन्नति के शिखर पर थी। विशालकाय चित्रों के निर्माण की भारी मांग चूंकि एक आम बात हो गई थी, अतः कलाकारों की कर्मशाला एक तरह की फैक्ट्री में बदल गई। केवल चित्रों का निर्माण ही बड़े पैमाने पर नहीं किया जाता था, बल्कि वे आकार में भी बड़े और भारी भरकम होते थे। आरंभिक पुनर्जागरण काल की सबसे विशाल पेंटिंग तितोरेतो की पैराडाइज है। वेनिस की कला का सबसे आकर्षक करने वाला पहलू है उसका सामाजिक चरित्र। फ्लेमिश कला जहां वीरतापूर्ण दृश्यों के लिए और रोम की कला अपनी विशेषता के लिए प्रसिद्ध थी, वहीं वेनिस की कला नगर और उसके निवासियों के रोजमर्रा के जीवन में प्रविष्ट हुई और कहीं भी यह सामाजिक जीवन को इस सीमा तक व्यक्त करती हुई दिखाई नहीं देती। 16वीं शताब्दी की कला मूलतः रोम में पल्लवित कला ही है और उच्च कोटि की पुनर्जागरण कला के रूप में पुकारी जाती है। कहा जाता है कि रोम में इस आंदोलन का आरंभ ब्रामांते 1444 से 1514 के मिलान से रोम की यात्रा से हुआ था। इतना तय है कि इस यात्रा के परिणाम आश्चर्यजनक हैं। कलात्मक और सांस्कृतिक प्राथमिकता फ्लोरेंस से रोम की ओर बदल जाती है। ऐसा क्यों घटित हुआ, यह समझने के लिए पोप जूलियस द्वितीय के प्रभावशाली व्यक्तित्व की ओर मुखातिब होने की जरूरत नहीं है। हालांकि यह भी निस्संदेह एक महत्वपूर्ण कारण था, बल्कि धर्म सुधार आंदोलन के दौर के परिणामों की ओर ध्यान देना चाहिए, जिन्होंने सारे यूरोप को हिलाकर रख दिया था। धर्म सुधार आंदोलन का यूरोप के अनेक भागों में कला पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। लूथर जैसे मूर्ति पूजा का विरोधी था, जैसे ही वह चर्च की कला का भी कटु आलोचक था। 1514 में ज्वेंगली ने ज्यूरिख नगर काउंसिल पर दबाव डाला कि वह सभी उपासना घरों और चर्चों से तमाम कलात्मक वस्तुओं को हटा दे, ताकि बाद में उन्हें नष्ट किया जा सके। काल्विन ने कभी भी कला को सुख और प्रसन्नता देने के माध्यम के रूप में नहीं माना। कला के प्रति आक्रामक रुख सांसारिक संस्कृति के प्रति आम आक्रामकता का ही एक हिस्सा था। इन वास्तविकताओं का सामना करते हुए धर्म सुधार आंदोलन के विरोधी आंदोलन ने कला का इस्तेमाल इस दकवानिसी रुझान के विरुद्ध एक हथियार के रूप में किया, एक ऐसे माध्यम के रूप में जिससे लोकमत को प्रभावित किया जा सके, तथा वह भी इस रूप में जैसा कि इससे पहले कभी भी नहीं देखा गया था। त्रांते काउंसिल 1545 को बुलाने का अर्थ था कला के साथ चर्च के संबंधों में उदारतावाद का अंत। इसके बाद से कला न केवल चर्च के उद्देश्यों के लिए ही रह गई, बल्कि उसे धार्मिक निरीक्षण के अधीन भी कर दिया गया। इस परिस्थिति में यह एकदम स्वाभाविक था कि कला की भूमिका संबंधी संपूर्ण अवधारणा में जबरदस्त तब्दीली आए। इस युग के सबसे महान सिद्धांतकार जियो पाओलो लोमाजो यह विश्वास करते थे कि चित्रकार को धार्मिक विषय वस्तु का चित्रांकन करते समय धर्मवेत्ताओं की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। माइकल एंथेलो ने चित्र के लास्ट जजमेंट में बिना दाढ़ी वाले ईसा मसीह के चित्रण की आलोचना की गई थी। इसी तरह से साथ दिखाए गए संतों की भाव मुद्राओं की भी आलोचना की गई थी। न्यूड नग्न चित्रों का चित्रांकन सभी कलाकृतियों में काउंसिल के बाद से रोक दिया गया था। मिसाल के लिए गिलियो की डायलोगो डेगली एरोरी देई चितोरी 1564 में और राफेल बर्गिनी की कृति रिप्सो 1584 में। आरंभिक पुनर्जागरण कालीन कला का सबसे आश्चर्यजनक गुण था उसका नैसर्गिक सौंदर्य एक ऐसी शैली थी जिसमें कुछ भी अप्राकृतिक नजर नहीं आता था। कहीं भी ऐसा नहीं लगता था कि अतिरिक्त श्रम किया गया है। रोम की कला का लक्ष्य एक बिल्कुल भिन्न प्रभाव डालता था। वह अपनी विशाल भव्यता से दर्शक को चकित कर देना चाहती थी और साथ ही अपनी सज्जा से भी। यह तथ्य सेंट पीटर के लिए ब्रामांते की मूल योजनाओं और माइकल एंजेलो द्वारा बाद में उनसे किए गए संशोधनों की तुलना करने पर भी स्पष्ट हो जाता है। राकेल और माइकल एंजेलो की कृतियों में अब हम एक आदर्श शारीरिक गठन के निर्माण का प्रयास पाते हैं, मनुष्य की एक बिल्कुल नई नस्ल जो इतनी खूबसूरत और पूर्ण है कि वह स्वयं प्रकृति के निर्माण से परे है। निःसंदेह इसकी प्रेरणा कुछ सीमा तक रोमन भव्यता की थी, जिसका प्रमाण आज भी उसके अवशेषों तक से मिलता है। लेकिन इतनी ही महत्वपूर्ण बात यह थी कि एविग्नो से पोप की वापसी के बाद से रोम महत्वपूर्ण राजनयिक मुलाकातों के केंद्र के साथ साथ एक विकासशील मुद्रा बाजार के रूप में विकसित हो गया था। पोप की शक्ति हर तरह से ज़्यादातर राजकुमारों, व्यापारियों या बैंकरों की वित्तीय शक्ति से बढ़ चढ़ कर हो गई थी। धर्म सुधार विरोधी आंदोलन के दौरान पोप ने खुद को इतना दैवीय दर्जा देना शुरू कर दिया था कि उसकी महानता ईश्वर की महानता के तुल्य हो गई थी। चर्च की कला में तड़क भड़क वाली दरबारी कला का चरित्र प्रविष्ट हो गया था। पुनर्जागरण काल के शिखर की कला एक हद तक बोर्जुआ भावुकतावाद में दूर थी। सीसा मसीह अब पीड़ित सहित नहीं रह गए थे, वरन उन्होंने एक ऐसे दिव्य सम्राट का रूप ग्रहण कर लिया था जो सभी तरह की मानवीय दुर्बलताओं से ऊपर होता है। यहाँ तक कि मरियम भी अब अपने मृत पुत्र की ओर अश्रुपूरित नत्रों से नहीं देखती थी। अब उसकी मुख मुद्रा एकदम भावहीन बन गई थी, जैसे कि वह सभी मानवीय भावनाओं का दमन कर रही हो। पुनर्जागरण का यह शिखर काल थोड़े अरसे तक ही रहा। कहना चाहिए कि यह राफेल की मृत्यु तक मुश्किल से ही चला। वास्तव में यह बालू का एक ऐसा छोटा सा किला था जो बनते ही ढह भी गया। इसकी वजह भूमध्य सागरीय संसार के आम पतन में खोजी जा सकती है, अर्थात इतालवी आर्थिक प्रभुता का अंत, पुनः स्थापना आंदोलन, इटली पर विदेशी हमले, रोम का विनाश, जब सेंट पीटर को एक अस्थायी शक्ति की तरह इस्तेमाल किया गया और वाटिकन को फौजी बैरकों में बदल दिया गया। इस दौर का पूरा वातावरण अत्यंत धर्मोन्मादपूर्ण और अंधकारमय है। इस दौर में संतुलन और अस्थायित्व कायम रखना अधिकाधिक कठिन होता गया। पुनर्जागरण कालीन संस्कृति की संपूर्ण प्रगति अवरुद्ध हो गई। आधुनिक युग की पहली बड़ी साम्राज्यवादी शक्तियों फ्रांस और स्पेन की विजयी सेनाओं ने नेपल्स, मिलान, लोम्बार्डो और फ्लोरेंस को रौद डाला है। इस दौर में शास्त्रीयता, क्लासिसिज्म और शास्त्रीय ढंग के मॉडलों की अनुकृति या उनकी नकल के रूप में रीतिवाद प्रचलित हुआ। लेकिन इसकी कलात्मक परिपाटी को सबसे अच्छी तरह इस रूप में समझा गया कि वह मानव अस्तित्व की व्याकुलता और वेदना की सभ्यता का अवशेष है। अतः आकारों का तीखा फन और स्वरों की उच्चता इस भय की ही अभिव्यक्ति है कि जिन स्वरों पर अधिक बल नहीं दिया जाएगा और जो आकार ज़्यादा तीखे नहीं होंगे वे जीवन संघर्ष में विफल हो जाएंगे तथा उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। कला में रीतिवाद वस्तुतः एक अंतर्राष्ट्रीय कलाकार समुदाय की ही शैली है तथा इसकी अगर पुनर्जागरण काल के आरंभिक दौर से तुलना की जाए तो यह दौर कला और व्यापक जन समुदाय के बीच संपर्क की और भी अधिक समाप्ति का प्रतिनिधित्व करता है। प्रौढ़ बैरोक कला कम से कम एकांतिक और अधिकाधिक सदस्य है। यदि शुद्ध तिथिक्रम से विचार किया जाए तो रीतिवाद बैरोक कला से अधिक धर्म सुधार विरोधी आंदोलन के नज़दीक है, लेकिन कला के माध्यम से सचेत रूप से कैथोलिक ईसाइयत का व्यापक प्रचार पहले पहल बैरोक कला के साथ ही शुरू हुआ था। ऐतिहासिक तौर पर यह कला तब शुरू हुई थी जब कैथोलिक चर्च धार्मिक विश्वास के प्रचार के साथ बहुत ज़्यादा गहराई से जुड़ा हुआ नहीं था।